علاج كنا إن شاء الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو سورة التطفیف کا ترجمہ ہم نے کر لیا مکمل، خلاصہ تفسیر الحمدللہ مکمل کر لی تھی. اب ہم اس کے معروف و مسائل شروع کر رہے ہیں پیج نمبر 693 سے. عمر صاحب آپ لکھ دیں گے پیج نمبر 693، ولیوم 8، معروف القرآن، معروف و مسائل پڑھ رہے ہیں. تو سورہ تطفیف کے بارے میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر یہ مکی صورت ہے. اچھا، یہ ہم نے پہلا پیراگراف لیکن کوئی ایک ریویو کی خاطر اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ عام مصاحف قرآن میں اسی بنا پر اس کو مکی لکھا ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں صورتیں یا آیتیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد جو صورتیں یا آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں. تو اس صورت کے بارے میں حضرت ابن عباس قتادہ مقاتل وحاق کے نزدیک یہ مدنی صورت ہے، مگر اس کی صرف 8 آیتیں مکی ہیں، کیونکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک صورت جو کہ تھوڑی بڑی صورتیں ہوتی ہیں تو ان میں ایسا ہوا ہے کہ کچھ آیتیں جو ہیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور کچھ آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھیں، یعنی ہجرت سے پہلے کچھ آیتیں نازل ہوئیں، کچھ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں. تو یہ ان میں سے ایک صورت ہے. اب ظاہر ہے یہ تو اب تک تو ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے آ رہے ہیں نا، لیکن اب جیسے جیسے ہم پیچھے جا رہے ہیں قرآن کے اندر تو صورتوں کی تعداد کی یعنی نمبر آف آیات اور سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ انشاءاللہ بڑی بڑی صورتیں بھی آ جائیں گی اس کے اندر. سورہ بقرہ سب سے بڑی صورت ہے. اب سورہ بقرہ میں کتنی ساری آیتیں ہیں. تو امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ منورہ کے لوگ جن کے عام معاملات کیل یعنی ناپ کے ذریعے سے ہوتے تھے، انہوں نے پیمانے بنائے ہوئے تھے، پیمانوں کے ذریعے سے وہ ناپتے تھے چیزوں کو اور وہ خریدنے والے کو بیچتے تھے، تو وہ اس معاملے میں چوری کرنے اور کم ناپنے کے بہت عادی تھے. اس پر یہ صورت ویل للمطففین نازل ہوئی. تو جیسے پچھلے ہفتے ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہوئی تھی کہ یہ لوگ ایمان لے کر کے آ گئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ایمان لانے سے سارے گناہ انسان کے دور نہیں ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں وہ گناہ دور نہیں ہو جاتے ہیں. اگر ہو جاتے تو پھر یہ لوگ یہ چوری کیوں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. گناہ دور ہونے میں جو کہ کنٹینیو ہے نا، گناہ ابھی ایمان لانے کے بعد بھی جو کنٹینیو ہو رہے ہیں، ان کو دور ہونے میں وقت لگتا ہے، اور اس کے لیے پھر احکامات کے اوپر جیسے جیسے احکامات کا پتہ لگتا ہے ویسے ویسے ان احکامات کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا کہ ان میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھیں تو وہ آہستہ آہستہ تدریجاً احکامات کے آنے کے ساتھ ساتھ پھر دور ہوئیں، جیسے کہ یہ والا معاملہ بھی ایسے ہی ٹھیک ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ پہلی صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ پہنچتے ہی نازل ہوئی. وجہ یہ تھی کہ اہل مدینہ میں یہ رواج اس وقت عام تھا کہ جب خود کسی سے سودا لیتے تو ناپ تول پورا پورا لیتے تھے، اور جب دوسروں کو بیچتے تو اس میں کمی اور چوری کیا کرتے تھے. اس صورت کے نازل ہونے پر یہ لوگ اس رسم بد سے باز آ گئے، اور ایسے باز آئے کہ آج تک اہل مدینہ ناپ تول پورا پورا کرنے میں معروف اور مشہور ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے جب توبہ کری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو یہ توبہ جو ہے وہ ایک عہد تھا، ٹھیک ہے، ایک عہد کیا کہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے. جب عہد کر لیا تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جو بھی فرماتے تھے، ٹھیک ہے، چاہے قرآن کی آیات کی شکل میں فرمائیں، چاہے جو ہے وہ اپنے الفاظ میں فرمائیں، چاہے وہی متلو کی شکل میں فرمائیں کہ چاہے وہی غیر متلو کی شکل میں فرمائیں، ٹھیک ہے نا. قرآن کی آیات کیا ہوتی ہیں؟ وحی متلو، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن کے علاوہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ وہی ہے، غیر متلو ہوتی ہیں، یعنی ہوتی وہ بھی وہی ہیں لیکن جن کی تلاوت نہیں کی جاتی. تو اصل بیس کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، ٹھیک ہے، چاہے وہ متلو کی شکل میں ہو چاہے غیر متلو کی شکل میں ہو، دونوں وہی ہیں، دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو راشد صاحب ذرا میوٹ کر لیے گا. تو ان لوگوں نے جو عہد کر لیا توبہ کرنے کے ساتھ یہ نبھاتے تھے، ٹھیک ہے. تو اب ہمارے ہاں بھی یہی سلسلہ مشائخ کے ہاں اس چیز کو آگے لے کے چلا گیا کہ مشائخ کے پاس جب بھی کوئی آتا ہے اپنی اصلاح کی نیت سے، ٹھیک ہے نا، اپنی اصلاح کی نیت سے آتا ہے تو اس کو توبہ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. توبہ کرنے کے اندر جو ہوتا ہے نا، یہ ایک امپلیسٹ، ایکسپلیسٹ تو نہیں ہوتا کہ جی تم وعدہ کرو کہ میری بات مانو گے آئندہ سے، ایسا کوئی ایکسپلیسٹ عہد نہیں لیتے، ٹھیک ہے. نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کوئی ایکسپلیسٹ عہد دیا تھا، ٹھیک ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی امپلیسٹ عہد ہی دیا تھا نا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ٹھیک ہے. یہ کلمہ تھا کہ جی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو ایک کلمہ پڑھ لیا، یہ امپلیسٹ سوری ایکسپلیسٹ عہد نہیں تھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، بھائی یہ الفاظ تو نہیں ہے کلمے کے اندر، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کلمہ جو ہے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے، اطاعت کی ڈیمانڈ کرتا ہے کلمہ، ٹھیک ہے نا. ایک عام عقل رکھنے والا انسان جو ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ کسی کو اللہ مان لینا، ٹھیک ہے، کسی کو پرستش کے لائق مان لینا، اللہ مان لینا کا مطلب پرستش کے لائق مان لینا، ٹھیک ہے نا، اور کسی کو اس کا رسول مان لینا، ٹھیک ہے. یہ امپلائی کرتا ہے اس بات کو کہ ان کی اطاعت کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ان کی اطاعت کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جو پرستش ہوتی ہے جس کو عبادت کہتے ہیں، یہ پرستش جو ہے یہ اصل میں اطاعت ہی، کامل اطاعت کا دوسرا نام ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پرستش جو ہے یہ اصل میں کامل اطاعت کا دوسرا نام ہے، ٹھیک ہے، کامل اطاعت کا دوسرا نام ہے یہ عبادت ہوتی ہے. ورنہ ہماری والی عبادت کیا ہوتی ہے؟ ہماری عبادت میں کوئی اطاعت شطاعت کا کوئی 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 مذاق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو ہماری عبادت تو پھر ہمیں وہی گل کھلا رہی ہے جو کہ ہم کھیل رہے ہیں آج کل، دیکھ رہے ہیں نا. لیکن اصل عبادت ایسی نہیں ہوتی جیسی ہم کرتے ہیں، اطاعت کے بغیر والی عبادت. تو اصل عبادت ہوتی ہے اطاعت والی عبادت. تو صحابہ جانتے تھے کہ انہوں نے وعدہ کر لیا ہے اطاعت کرنے کا، تو اس وجہ سے ان لوگوں کے لیے آسان ہوتا تھا کہ جی کل کو شراب چھوڑنے کا حکم آ گیا، شراب چھوڑ دی. ان کو جو ہے وہ ناپتول میں کمی سے بچنے کا حکم آ گیا، تو ناپتول میں کمی کرنی چھوڑ دی، ٹھیک ہے. بس سیدھی سی بات ہے. تو یہی اصل طریقہ ہے کہ جب ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں نا، تو گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے بھی تو ہم ایمان کی تجدید بھی تو کرتے ہیں نا، اور استغفار بھی تو کرتے ہیں نا. تو اس میں بھی ایک امپلیسٹ عہد یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اب ہم نے مان کے چلنی ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم ہم تک جس وسیلے سے پہنچ رہے ہیں، رسول کا وسیلہ، پھر علماء کرام کا وسیلہ، مشائخ عظام کا وسیلہ، ہم نے ان وسیلوں کی بھی ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے اپنے نفس کی اطاعت نہیں کرنی ہے، اب ہم نے شیطان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، بلکہ ہم نے رحمان اور رحمان کے جو واسطے ہیں، جن واسطوں سے رحمان کے حکم ہم تک پہنچتے ہیں، ہم نے ان واسطوں کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ٹھیک ہے. یہ واسطے اللہ تعالیٰ نے کلیئر ڈیفائن کر دیے قرآن کے اندر. اللہ تعالیٰ کی آواز تو نہیں آتی نا بھائی، بھائی بھائی بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے اس بات کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اسی چکر میں رہتے ہیں، اللہ کی آواز آ جائے بس کسی طریقے سے ہمیں، اور پھر ہم اس کی اطاعت کریں گے. وہ تو کبھی آنی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ تو مرنے کے بعد ادھر جب حساب کتاب ہوگا تب اللہ کی آواز آئے گی، لیکن دین اٹ ول بی ٹو لیٹ. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے واسطے بنائے دنیا کے اندر جن کی اطاعت کرنی پڑتی ہے. اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ ویل للمطففین. تو مطففین کا جو لفظ ہے یہ تطفیف سے مشتق ہے، ڈرائیوڈ ہے، ٹھیک ہے. تو ڈرائیو کس لفظ سے کیا رہا، کس چیز سے کی جاتی ہیں چیز، کس چیز سے ڈرائیو کیے جاتے ہیں؟ اسے مصدر سے ڈرائیو کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. مصدر جو ہوتا ہے وہ روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس روٹ ورڈ سے جو ہے وہ دوسرے الفاظ ڈرائیو کیے جاتے ہیں. تو تطفیف سے یہ مطففین مشتق ہے. تو جس کے معنی فرما رہے ہیں کہ ناپتول میں کمی کرنے کے ہیں، اور ایسا کرنے والے کو مطففن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو مطففن کیا ہے جی؟ پھر صرف والے اگر اس کا صیغہ بتا دیں मुतफ़िफ़ुन का सीगा क्या बनेगा फिर? बाप नहीं पूछ रहा, वो जरा मुश्किल है आपके लिए अभी, सिर्फ सीगा बता दें क्या क्या कहलाएगा ये मुतफ़िफ़ुन। तर्जुमा तो उन्होंने लिख दिया है ना खुद ही, तो तर्जुमे को देख करके आप सीगा बता सकते हैं, आगे पीछे देखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ ना भी आती हो फिर भी बता सकते हैं। तो मुतफ़िफ़ुन क्या है? फेले माजी है, फेले मुजारे है, फेले अमर है, फेले नहीं है, इसम तब्दील है, इसम ज़र्फ है, क्या है ये? जब हम मुज़क्कर हाजिर, इसम मफ़ूल है। अच्छा, इसम मफ़ूल है तो इसका तर्जुमा इन्होंने क्या किया है, इसे लिखा हुआ है ना अभी तर्जुमा, कि जिसके मानी नाप तोल में कमी करने के हैं, ठीक है, तख़फीफ़ के मानी है नाप तोल में कमी करना, और ऐसा करने वाले को मुतफ़िफ़ुन कहा जाता है। तो मफ़ूल का क्या मतलब होता है? इसम मफ़ूल का सीगा तो उसके लिए बोला जाता है ना जिसके ऊपर कोई काम किया जा रहा हो, यहां पर तो है कि ऐसा करने वाले को मुतफ़िफ़ुन कहा जाता है, तो फिर क्या बना? आप लोग जरा जल्दी जल्दी आगे तकरार करें ताकि आगे की भी चीजें समझ में आनी शुरू हो। भाई करने वाला, सबसे आसान वाला सीगा था ये तो, राइट? इसम फाइल का सीगा है ना ये, इसम फाइल, फाइल नहीं, इसम फाइल का सीगा है ना, डूअर, ठीक है? तो कमी करने वाला इसम फाइल, काम करने वाला फाइलुन, मारने वाला वारेबुन, सुनने वाला सामिउन, ठीक है? तो ये है तो इसम फाइल का सीगा, लेकिन ये मुतफ़िफ़ुन क्यों है? इसलिए कि ये सुलासी मजीद फी ही के बाप से आ रहा है, ठीक है? कौन से बाप से आ रहा है? तफ़फ़ा युतफ़िफ़ु तफ़फ़ीफ़न, इसम बाबे, यानी ये आ रहा है बाबे तफ़ील से, ठीक है? तफ़फ़ीफ़ बाबे तफ़ील से आ रहा है, जैसे सर्रफ़ा युसर्रिफ़ु तसरीफ़न होता है, उसी तरह तफ़फ़ा युतफ़िफ़ु तफ़फ़ीफ़न फ़हुआ मुतफ़िफ़ुन, ठीक है? तो यह है मुतफ़िफ़ुन, यानी कमी करने वाला नाप तोल में। कुरान हकीम के इस इरशाद से साबित हुआ कि तफ़ीफ़ करना हराम है, क्योंकि कुरान ने उसके लिए वैल का कह दिया, तो वैल का जिसके लिए कुरान ने कह दिया तो वो चीज़ हराम हो गई, वरना कुरान में लफ्ज़ हराम इस्तेमाल हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वैल का वादा हो गया ना तब हराम हो गई। अब आगे कहते हैं कि तफ़ीफ़ सिर्फ नापतोल ही में नहीं बल्कि हकदार को उसके हक से कम देना किसी चीज़ में हो तफ़ीफ़ में दाखिल है। जैसे पिछले क्लास में हमने शोहर और बीवी की मिसाल दी थी कि अगर इन दोनों में से एक दूसरे को हक नहीं देता पूरा, तो वो भी तथवीफ में शामिल है। कुरान और हदीस में नापतोल में कमी करने को हराम करार दिया है, क्योंकि आम तौर से मुआमलात का लेन देन इन्हीं दो तरीकों से होता है, इन्हीं के जरिए ये कहा जा सकता है कि हकदार का हक अदा हो गया या नहीं हुआ। लेकिन ये मालूम है कि मकसूद इससे हर एक हकदार का हक पूरा पूरा देना है, इसमें कमी करना हराम है। तो मालूम हुआ कि ये सिर्फ नापतोल के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ जिससे किसी का हक पूरा करना या ना करना जांचा जाता है, इसका यही हुक्म है, ख्वाह नापतोल से हो या अदद शुमारी से या किसी और तरीके से, ठीक है? जैसे कि आपने अगर कि यानी फॉर एग्जांपल अंडे जो है वो दर्जन के हिसाब से खरीदे जाते हैं, ठीक है? अब अंडे के खरीदने के अंदर आप ना नाप इस्तेमाल करते हैं ना नाप तोल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर आपने किसी बंदे से एक दर्जन अंडे के पैसे ले लिए, लेकिन एक दर्जन देने की बजाय आपने उसको 10 अंडे दिए खाली, ठीक है? तो अब इसके अंदर ना नाप किया आपने, नाप में कमी करी, ना तोल में कमी करी, आपने किस चीज़ में कमी करी? आपने अदद शुमारी में कमी करी ना, तो अदद शुमारी में कमी करना ये भी तख़फीफ़ है, ठीक है? तो इसी तरह से या किसी और तरीके से हर एक में हकदार के हक से कम देना बहुक्म तख़फीफ़ हराम है। तो आगे फरमाते हैं कि मुअत्ता इमाम मालिक में है कि हजरत मुअत्ता इमाम मालिक जो है वो हदीस की सही तरीन किताबों में से एक किताब है, जो सहाह सित्ता कहलाती है ना, 6 सही तरीन किताबें, तो उनमें से एक जो है वो मुअत्ता इमाम मालिक भी है, ठीक ठीक है, अक्सर मुहद्दिसीन के नज़दीक मौत इमाम मालिक इज़ वन ऑफ देम, ठीक है, लेकिन कुछ के नज़दीक जो है वो सुनन नसई जो है ना वो है इनमें से एक, या सुनन इब्न माजा, तो इब्न माजा या नसई को निकाल करके मौत इमाम मालिक को कुछ मुहद्दिसीन दाखिल करते हैं सहाय सत्ता के अंदर। तो मौत इमाम मालिक में है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक शख्स को देखा कि वो नमाज के रुकू सजदे वगैरह पूरे नहीं करता, जल्दी जल्दी नमाज खत्म कर डालता है। जैसे कि अक्सर देखा होगा आपने भी कि सजदे सजदा किया और फिर उसके बाद दो सजदों के दरमियान जो बैठना होता है वो बैठे बगैर ही हल्का सा उठे और दोबारा सजदे में चले गए, ठीक है, तो ये कमी कर दी। या रुकू जो है वो रुकू कर तो लेते हैं, रुकू तो हल्का सा अगर आप झुक जाए तो रुकू हो जाता है, ठीक है, लेकिन रुकू के बाद जो सीधा खड़ा होना होता है, कादा जो करना होता है, उसके अंदर कमी कर देते हैं, तो खड़े हुए बगैर ही जो है वो सजदे में चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से ना नमाज के अंदर कमी हो जाती है, तो इससे नमाज जो है नाकस हो जाती है। तो उसको नबी हजरत उमर फारूक ने देखकर फरमाया कि लकद तफफता, लकद तफफता, क्योंकि तफफा जो है ये फेले माजी है, फेले माजी को आप गर्दान में चलाएं तो तफफा तफफा तफफू तफफत तफफता तफफना फिर तफफता तफफता, ये क्या है, वाहिद मुजक्कर हाजिर फेल माजी मारूफ, वाहिद मुजक्कर हाजिर फेल माजी मारूफ का सीगा तफफता, जैसे फालता होता है उसी तरह तफफता, के तहकीक के तूने तूने अल्लाह के हक में तखफीफ कर दी, ठीक है, अल्लाह के हक को तूने घटा करके अल्लाह को दिया, क्योंकि ये नमाज जो है पांच फर्ज नमाजें ये अल्लाह ताला का हक है हमारे ऊपर, ये हम अल्लाह ताला को कोई नफिल नफली चीज नहीं दे रहे, कोई एडिशनल चीज नहीं दे रहे, ये मिनिमम हक है अल्लाह ताला का हमारे ऊपर जिसकी अल्लाह ताला ने डिमांड करी है हमसे, तो तूने अल्लाह ताला के हक में तदफीफ कर दी। फारूक आजम के इस कॉल को नकल करके हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया लिकुल्ली शैइन वफाउन व तदफीफ, ठीक है, यानी हर चीज के लिए वफा भी है और तदफीफ भी है। आप यानी वफा अगर आप किसी भी मामले के अंदर पूरा पूरा देते हैं तो वो वफा कहलाएगी, और अगर किसी भी मामले के अंदर आप घटा करके देते हैं तो वो तथवीफ कहलाएगी, ठीक है, यानी पूरा हक देना या कम करना हर चीज में है, यहां तक कि नमाज, वुजू, अब वुजू में जो है वो आजा अच्छी तरीके से नहीं धो रहे बल्कि खुश्क छोड़ दिए, ठीक है, जो फर्ज वाले आजा थे उनको खुश्क छोड़ दिया तो वुजू में तथवीफ हो गई। तहारत में तथवीफ कि नजासत अच्छी तरीके से साफ नहीं करी रह गई बदन के ऊपर नजासत तो तहारत में तथवीफ हो गई। इसी तरह दूसरे हुकूकुल्लाह और इबादात में कमी कोताही करने वाला तख़फीफ करने का मुजरिम है। इसी तरह हुकूकुल इबाद में जो शख्स मुकर्ररा हक से कम करता है वो भी तख़फीफ के हुक्म में है, ठीक है। अब हमने तो घर की मिसाल दी थी लेकिन घर के बाहर की भी के मामलात भी इसमें आते हैं, जैसे मजदूर मुलाजिम ने जितने वक्त की खिदमत का मुआहदा किया है उसमें से वक्त चुराना और कम करना भी इसमें दाखिल है, ठीक है। अगर आपने एग्रीमेंट ये किया है कि जी आपने 9 to 5 जो है वो बैठना है, ठीक है ना, दफ्तर के अंदर आपने मौजूद होना है, अब ये जो आपने यानी एक अहद कर लिया है तो 9 to 5 मौजूद होना, ठीक है, मौजूद होने के ऊपर जरा एम्फेसाइज करें, ठीक है, मौजूद होना, ठीक है, अगर इसका आपका एग्रीमेंट है ना तो फिर 9 to 5 की बजाय अगर आप 10 to 5 पहुंचते हैं, यानी 10 पहुंचते हैं और फिर 5 वहां से निकल जाते हैं, या अगर आप 9 बजे पहुंचते हैं और 4 बजे वहां से निकल जाते हैं तो ये तदफीफ होगा। तो फरमाया कि वक्त के अंदर जिस तरह मेहनत से काम करने का उर्फ में मामूल है, ठीक है, ये असल में मैं कहना चाह रहा था कि बैठना का जो अहद है ना ये हर जगह नहीं होता, ठीक है, कि आपने बैठना है, तो इसी वजह से इन्होंने जो ये अल्फाज लिखे हैं ना कि जिस तरह मेहनत से काम करने का उर्फ में मामूल है, उर्फ में मालूम मामूल का क्या मतलब होता है कि जिस जगह आप जॉब कर रहे हैं ना वहां के उर्फ को देखा जाएगा कि वहां पर जो मैनेजमेंट है या जो आपका एम्प्लॉयर है, आपका बॉस है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, क्या एक्सपेक्ट करता है, तो जो एक्सपेक्ट करता है ना वो उर्फ कहलाएगा। अब उसकी एक्सपेक्टेशन अगर ये है कि जी आपने हाजिरी लगानी है, ठीक है ना, आपको हाजिर रहना है, जैसे कि एक एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब होती है, चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड की जॉब होती है, वो जॉब कैसी होती है कि उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड को फिजिकली प्रेजेंट रहना होता है, ठीक ठीक है ना, उसने कोई बैठ करके वहां पर कोई कोई दस्तावेज नहीं लिखनी होती है, उसने कोई जो है वो यानी कोई तदब्बुर नहीं करना होता बैठ करके किसी काम के ऊपर, ठीक है ना, उसने फिजिकली प्रेजेंट रहना होता है, उसकी प्रेजेंस होती है सेफ्टी के लिए, क्योंकि उसको जो है वो एम्प्लॉयर ने एम्यूनिशन भी दिया हुआ होता है, गन्स वगैरह दी हुई होती है, ठीक है ना, और एक खास किस्म का यूनिफॉर्म भी पहनाया हुआ होता है, तो उसकी प्रेजेंस जो होती है ये सेफ्टी को इंश्योर करती है। अगर कोई डाकू आ गया, ठीक है, अब डाकू को रोकना, कुछ रेजिस्टेंस करना, ये भी उससे एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रोक भी पाएगा डाकू को, ठीक है, वो हो सकता है ना रोक पाए, हो सकता है डाकू उसको मार करके आगे बढ़ जाए या डाकू उसको उसको बांध करके आगे बढ़ जाए, ठीक है ना, तो ये तो एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं होती है कि तुमने हर सूरत में डाकू को रोकना है, क्योंकि भाई डिपेंड करता है ना वो कितनी पावर के साथ आ रहे हैं, कितनी फोर्स के साथ आ रहे हैं, लेकिन इससे एक्सपेक्टेशन क्या है कि तुमने प्रेजेंट रहना है, जो तुम्हारी ड्यूटी के टाइम्स है तुमने उसको उसमें इस दरवाजे को खाली नहीं छोड़ना है, तो ये सिर्फ इससे एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। लेकिन जो व्हाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि एक यानी एक मार्केटिंग की जॉब है या एक ऑफिस में बैठ करके जो कंप्यूटर प्रोग्रामर की जॉब है या इस किस्म की जॉब्स हैं, तो इस किस्म की जो जॉब्स होती है ना, इनमें उर्फ क्या होता है, उमूमन जो हमने देखा है वो उर्फ जो है वो प्रेजेंस नहीं होता, कि जी आपने हाजिरी लगानी है और अब हाजिरी लगाने के बाद आपने बैठना है, बस हम आपकी शक्ल देखना चाहते हैं, आप हमारी शक्ल देखें, हम आपकी शक्ल देखें, ये नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि आपको टास्क असाइन किया जाता है, आपको प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है, अब आपने वो प्रोजेक्ट जो है वो जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन होती है उस टाइमलाइन के साथ और उस एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड के साथ आपने उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना होता है, उसको कंप्लीट करना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर उर्फ डिफरेंट है, वहां पर उर्फ डिफरेंट है, ठीक है, तो उर्फ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, इस वजह से बात को जरा सा समझना पड़ता है कि भाई अब ये भी होता है कि जॉब्स के अंदर जो है वो आपने 9 to 5 का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दिया है, ठीक है, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेड ये है कि जी आपने जॉब मुकम्मल करनी है, प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है, अब आप जो है वो 9 to 5 नहीं बैठे हुए, आप 9 to 9 बैठे हुए हैं, ठीक है, 9 बजे घर जा रहे हैं, 10 बजे घर जा रहे हैं, और हद तक वीकेंड के ऊपर भी आपको बुलाया जा रहा है, हालांकि वीकेंड के ऊपर जो काम करना ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल नहीं था, 9 to 9 बैठना आपके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं था, ठीक है, 24 घंटे काम करना आपके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं था, लेकिन आप कर रहे हैं बिकॉज आपको डिलीवर करना है, ठीक है, तो जब आप इतना ज्यादा वहां पे काम करेंगे तो फिर भाई आपके आपके बिल्स कौन पे करेगा, कैसे पे होंगे, आपके जो है वो जो गवर्नमेंट रिलेशंस के काम होते हैं जिसमें कभी आपको खुद भी जाना पड़ता है, कभी ऑफिस वाले भी काम आपका करवा देते हैं, ये काम कैसे होंगे, ठीक है ना, आपकी बीवी को जो है कभी हॉस्पिटल जाना होता है और हमेशा वो हॉस्पिटल इतना आसानी से दूसरों के साथ तो नहीं जा सकती है ना, खुसूसन जो बाहर के मुल्क होते हैं उनके अंदर, ठीक है, तो बीवी को हॉस्पिटल भी लेके जाना है, बच्चे को जो है वो कभी डॉक्टर के पास लेके जाना है, कभी बच्चे के स्कूल में जाना पड़ता है, स्कूल के अंदर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, ऑफिस का काम होता है जिसमें फादर को जाना पड़ता है, राइट, मदर के जाने से काम नहीं बनता, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, अब यह काम आप कब करेंगे, ठीक है ना, इसके लिए कोई आपके लिए 24 घंटे के अलावा कोई एडिशनल तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको टाइम नहीं देना है ना, ठीक है ना, तो आपको उसी टाइम में करना होगा और वर्किंग आवर्स के अंदर ये काम करने होंगे, ठीक है ना, वर्किंग आवर्स के अंदर ही करने हैं, तो अब आप ये सारे काम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक सेल्फ दयानतदारी अपनी जिंदगी के अंदर डालनी होगी, ठीक है, एक सेल्फ दयानतदारी, सेल्फ इम्पोज, ठीक है, कि आप जो है ये जरूरत के काम जो है वो करें भी सही क्योंकि ये जरूरत है, ठीक है, और आप जो है वो इसके अंदर सुस्ती, काहिली और इसको बहाना बना करके जो है वो वक्त जाया ना करें, आप इक्वली कॉम्पेंसेशन का वाला मामला करें कि भाई उधर से आपको उन्होंने ये एक्सपेक्टेशन करी है कि जी आप से बहुत ज्यादा ओवर टाइम ले रहे हैं, हालांकि आपको पेमेंट कर नहीं रहे, ठीक है, बहुत ओवर टाइम कर रहे हैं आप, बहुत ओवर टाइम आपसे ले रहे हैं, तो अब उस ओवर टाइम को आप किसी तरीके से ऐसे कॉम्पेंसेट करें ताकि आपकी जिंदगी की बाकी जरूरियात जो है जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपके बीवी बच्चों का आपके ऊपर हक है, सिर्फ जॉब का हक कोई थोड़ी है, सिर्फ मैनेजर का हक कोई थोड़ी है, ठीक है, बीवी बच्चों का भी तो हक है ना, कभी दूसरे रिश्तेदार होते हैं उनका भी तो हक है ना, आपकी अपनी आपकी अपने बदन का भी आपके ऊपर हक है, ठीक है, तो इन सब चीजों को ना आपने इस एक दयानतदारी के साथ इन सब चीजों को लेकर के साथ चलना है, ठीक है, अब ये दयानतदारी इंसान तभी कर सकता है कि जब जो है वो अपने एक तो ये कि वो उसके लिए दयानतदारी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना, उसको जवाब अल्लाह ताला के सामने जवाबदही का इसको फिक्र हो, तभी वो दयानतदारी कर सकता है, वरना तो फिर वो वही डंडी मारेगा, वही जो है वो बहाने बनाएगा कि हाँ जी इन्होंने तो मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है, अब मैं इनके साथ जुल्म कर, अब मैं जरा इनको दिखाता हूँ, ठीक है, कि जी इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, तो इस तरीके से इंसान नहीं कर सकता, बल्कि अल्लाह ताला ने इक्वल इक्वल हिसाब करने की इजाजत दी है, जैसे जैसे अगर किसी बंदे ने आपके साथ अच्छा किया है तो उसके साथ अच्छा करें, बुरा किया है तो उसके साथ उतना ही बुराई करने का अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि भाई अगर तुम माफ कर दो और इग्नोर कर दो तुम्हारे हक में ये ज्यादा बेहतर है, हम तुम्हें ज्यादा बेहतर अजर देंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर तुम बराबर सराबर की कोशिश करोगे, बराबरी की बुराई करने की कोशिश करोगे ना, तो हो सकता है तुम बुराई में आगे बढ़ जाओ, तुम्हें पता भी ना लगे, और इसके ऊपर पे तुम्हारे साथ कयामत के दिन हमें फिर हिसाब देना पड़े तुमसे। ठीक है, तो एक दयानतदारी एक ऐसी चीज है कि जिसके बगैर जो है ना दुनिया का कोई मामला चल नहीं सकता, जिसको कि एक्चुअली कुरान की जुबान में इसको दयानतदारी नहीं कहा जाता, कुरान की जुबान में इसको तकवा कहा जाता है। ठीक है, तकवा के बगैर ये चल नहीं सकता मामला, इंसान का दीन नहीं चल सकता, मामला सही चल नहीं सकते, खुसूसन घर के अंदर के मामला, बीवी के साथ मामला। चलो भाई दफ्तर के मामला में तो ये होता है ना कि जी जो एम्प्लॉयर होता है वो ताकतवर होता है, वो आपको जो है वो पिनलाइज भी कर सकता है, वो आपको जॉब से भी निकाल सकता है, तो उसका एक खौफ होता है। ठीक है, उसका एक डर होता है, उसका एक प्रेशर होता है बंदे के ऊपर, तो बंदा उसके साथ इतना आसानी से यानी बेदयानती कर नहीं सकता। लेकिन घर के अंदर तो ऐसा कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि बीवी उमूमी तौर पर जो है वो आपके तहत होती है, आपके घर में होती है, आपके खानदान में रह रही होती है, तो वो उमूमी तौर पर कमजोर होती है। तो बीवी के मामलात के अंदर दयानतदारी का ख्याल रखना ये खुदा खौफी के बगैर इंसान नहीं कर सकता। ठीक है, खुसूसन बीवी के मामले में, और इसके अलावा दूसरे रिश्तेदारों के मामले में जहां पर कि ऐसा एम्प्लॉयर की स्ट्रांग हैंड वाला इशू होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो यही फरमा रहे हैं कि जो जो तदफीफ जो है ना ये हर मामले के अंदर होती है अगर इंसान बेदयानती के साथ कमी कोताही करे तो ये तदफीफ में शामिल हो जाता है। तो फरमाया कि इसमें आम लोगों में यहाँ तक कि अहले इल्म में भी गफलत पाई जाती है। भाई अहले इल्म जो होते हैं वो किताबें पढ़ने से एक अच्छी खासी तरबियत और मामलात पता तो लग जाते हैं, लेकिन तकवा तो एक अलग चीज होती है ना। तो तकवा जो है वो तो तज़किए के जरिए से आती है, तो आपने किताबें पढ़नी, मदरसे में भी चले गए, लेकिन अगर तकवे के ऊपर मेहनत नहीं करी तो फिर थ्योरी से तकवा नहीं आता। इसी वजह से हमारे अकाबरीन के यहाँ सिस्टम ये था कि आलिम बनने के साथ साथ जो है वो किसी शेख के साथ अपनी इस्लाह का ताल्लुक भी बनाना जरूरी होता था। ठीक है, हत्ता के दारुलूम देवबंद में इब्तदाई जमाने में कम से कम सनद ही नहीं मिलती थी आलिम बनने की, जब तक के किसी शेख के साथ पक्का इस्लाही ताल्लुक ना बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि ये गफलतें जो होती हैं फिर अहले इल्म में भी हो सकती हैं, तो इस्लाही ताल्लुक से फिर इंसान जो है वो इन गफलतों से बच पाता है। आगे फरमाया कि अपनी मुलाजमत के फराइज में कमी करने को कोई गुनाह ही नहीं समझता, आज़न अल्लाहु मिन्हु, कि हम अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं इसकी, इससे अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं। अब इसके अंदर ये जो तदफीफ वाला मामला है ना ये बहुत नाजुक मामला है, और ये यानी अगर हकीकत देखी जाए ना, अगर यानी सच्ची बात की जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर मामले को बिल्कुल ठीक ठीक अंजाम दे। ठीक है, इसके लिए आपको ना सिर्फ ये कि बहुत ज्यादा अल्लाह के खौफ की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अल्लाह ताला का हर वक्त इस्तेजार, हर वक्त जिक्र की हालत, ठीक है, कभी भी गफलत की हालत नहीं, और बहुत ज्यादा आखिरत की फिक्र। ठीक है, और साथ साथ सिर्फ ये भी काफी नहीं होता, बल्कि साथ साथ आपको मेंटली भी बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है, मामलात को टाइम पर निपटा देना, हर एक का हक पूरा पूरा अदा कर देना, ये चाहने के बावजूद मुमकिन नहीं हो पाता है। एक बंदा चाहता है हक अदा करना, लेकिन खाली चाह लेने से कोई थोड़ी सब कुछ हो जाता है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा आपको अच्छी खासी यानी एफर्ट भी करनी पड़ती है, और आपको बहुत ज्यादा शार्प भी होना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा क्विक भी होना पड़ता है। ठीक है, इतना आसानी से हक अदा नहीं हो जाते हर एक के। आपके घर में अगर चार बंदे आ जाए ना जिनके के आपके ऊपर हक बनते हो, और चारों के हक जो है वो आप अदा करने की कोशिश करें ना, पता लगेगा कि क्या हशर होता है उसके बाद फिर। ठीक है, आप लोगों को तजुर्बा होगा, घर के अंदर होते हैं चार पांच लोग तो होते हैं एक तरफ, और खास खुसूसन जब शादी हो जाती है तो फिर एक तरफ तो बीवी होती है, उसके हक भी अदा करने होते हैं, और फिर उमूमन जो है वो बूढ़े माँ बाप भी साथ होते हैं, उनके भी हक अदा करने होते हैं, और फिर बच्चे भी होते हैं, उनके भी हक अदा करने होते हैं। ठीक है, और फिर बात यहाँ पे खत्म भी नहीं होती, उसके अलावा रिश्तेदार और भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं, न जाने कितने लोग होते हैं जिनके हुकूक हमारे ऊपर आते हैं। भाई कोई आसान काम है हक अदा करना लोगों के? ठीक है, बहुत मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, नायगरा फॉल्स के ऊपर एक पतली यानी समझने की खातिर कह रहा हूँ, नायगरा फॉल्स के ऊपर एक पतली रस्सी बांध रहे और इस रस्सी के ऊपर जो है ना वो आप एक डंडे के सहारे चलें, ठीक है ना, जो कहते हैं ना रोप वॉकिंग, टाइट रोप वॉकिंग जिसको कहते हैं, ठीक है ना, ये जो टाइट रोप वॉकिंग है ना ये शायद ज्यादा आसान है, और अपनी जिंदगी में सारे लोगों के हकूक अदा करना जो है ना ठीक, ये ज्यादा मुश्किल काम है, ठीक है। अगर करने की कि इंसान दयानतदारी से कोशिश करे ना तब पता लगता है उसको, अगर कोशिश ना करे, हमारी तरह से बेफिक्र है भाई, टीवी देख देख करके अपना टाइम पास कर रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं और ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो हमें हु केयर्स होता, वो तो देखी जाएगी, मरने के बाद देखी जाएगी ना, तो हमें तो परवाह ही नहीं होती ना, इस वजह से हमें एहसास ही नहीं होता कि कितना मुश्किल काम है ये, ठीक है। करने की जो कोशिश करता है ना उसको एहसास होता है कितना मुश्किल काम है। तो हकीकत ये है कि हम कितनी सर मारने हम नहीं कर सकते हक अदा, और उसके ऊपर माशाल्लाह एक और बात रह गई है वो भी करते चलें कि माशाल्लाह हर शोहर को जो है फिक्र भी होती है कि जी एक एक बीवी काफी नहीं है, तो दो दूसरी भी बीवी लाए लाए किसी तरीके से। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि दूसरी शादी के चक्कर में हर वक्त रहते हैं, ठीक है, बाकायदा आके पूछते हैं कि जी इजाजत दे दें तो दूसरी भी कर लूँ, ठीक है, तो दूसरी शादी के चक्कर में रहते हैं। और दूसरी शादी यानी दूसरी शादी तो ऐसे है कि यानी अगर आप हक अदा कुछ कर भी रहे थे ना पहले, तो दूसरी शादी करने के बाद तो फॉरगेट इट, फिर तो आपके ऐसा कीमा बनेगा कि आपके आइंदा 7 नस्लें याद करेंगी कि आपने क्या कर लिया था ये, ठीक है। तो ये दूसरी शादी करके फिर दो बीवियों के दरमियान हक को बैलेंस करना, अल्लाह ताला का कुरान भी इसके ऊपर गवाह है कि तुम ये नहीं कर सकते, ये इतना आसान काम नहीं है, तुम नहीं कर सकते ये चीज, ठीक है। तो वो दूसरी शादी करना ये उसके लिए अलग रीजंस होते हैं, ठीक है, वो जो जायज अल्लाह ताला ने रखी है ना और फिर हमारे अकाबरीन ने करी भी है, तो उसके अलग रीजंस होते हैं, ये तफरी शुगल नहीं होते उसके रीजंस। तफरी शुगल की खातिर अगर दूसरी शादी करेंगे ना तो फिर ऐसा अपने आप को फंसाएंगे, ऐसा फंसाएंगे कि कभी भी उसमें से नहीं निकल सकेंगे। वो तो रीजंस दूसरे होते हैं कि भाई कफालत होती है रीजन के, ऐसी औरतें मौजूद हैं कि जिनकी कफालत की जरूरत है, तो इस तरह से कफालत हो जाए, और रीजन जो है, तो इस तरीके से अब इंसान करता है ना तो फिर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाती है। लेकिन अपनी नफ्स परस्ती की खातिर अगर करेगा और बड़ों की अगर एडवाइस है कि नहीं करो फिर भी करेगा, फिर तो अल्लाह ताला बंदे के अपने हाल पे छोड़ देते हैं, फिर जाओ निपटो तुम खुद ही, ठीक है। तो इस तरीके से ना फिर मामला बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब सवाल ये है, पता नहीं आपने क्या सवाल रखा, लेकिन मैं खुद एक सवाल रखने वाला था आपके सामने, कि सवाल ये है कि फिर करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, अगर हक अदा नहीं कर सकते तो फिर क्या करें। चलिए आपका मैं पहले ही पढ़ लेता हूँ। एक क्वेश्चन है कि अगर ऑफिस लॉग इन टाइम में 15-30 मिनट अगर लेट हो जा रहे हैं तो उसको कैसे कॉम्पनसेट करना चाहिए। कॉम्पनसेट करने के लिए 15-30 मिनट और लगा दें। आपके यहाँ अगर टाइम पंचन वाला ही सिलसिला है, जैसे कि उर्फ में अभी बात हुई थी ना कि ये आपके यहाँ ये टाइम वाला सिलसिला है, ठीक है, तो फिर उसके अंदर 15-20 मिनट, 15-30 मिनट जो आपने लेट किया है तो उसको लेट को कवर अप कर दें किसी तरीके से। लेकिन और बहुत और भी बातें होती है ना कि जी आप अगर आईटी स्पेशलिस्ट हैं तो आईटी स्पेशलिस्ट की जो जॉब्स होती हैं वो यूजली जो हैं वो टास्क बेस्ड होती हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड होती हैं। तो भाई करें तो क्या करें, जब इतना मुश्किल मामला है ना तो क्या करें। तो इसका बहुत ही सादा सा आसान सा जवाब है, अगर आप में से कोई दे दे तो अच्छा नहीं होगा, अल्लाह से दुआ करें। अच्छा, और कोई दुआ तो करें, लेकिन दुआ में क्या क्या मांगे, क्या मांगे दुआ में, दुआ तो हर चीज के लिए होती है, दुआ तो एक जनरल टर्म है ना। तौबा करें, अल्लाह की मदद मांगे, माफी मांगे जी, तक्वा हासिल करने की कोशिश करें। हाँ, लेकिन कर नहीं सकते ना, ये मामला इतना आसान है नहीं, कोशिश तो बेशक करनी करनी चाहिए लेकिन कर नहीं सकते, शेख की मान के चले नहीं, इत्मीनान कल्ब, हाँ बेफिक्र हो जाएं, क्रिकेट देखना शुरू हो जाएं और बेफिक्र हो जाएं, इत्मीनान कल्ब मिल जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता। इसका आसान जवाब है, एक ही जवाब है कि अल्लाह ताला से हर वक्त माफी मांगते रहें, हर वक्त माफी मांगते रहें, हर वक्त डरते रहें, ठीक है। खशियत, जिसको खशियत कहते हैं, हर वक्त डरते रहें अल्लाह ताला से, ठीक है, कि मेरे ऊपर हकूक हैं, मैं तो हकूक नहीं अदा कर पा रहा हूँ, अल्लाह बस तू मुझे माफ कर दे, ना सिर्फ तू मुझे माफ कर दे बल्कि जिन जिन के हुकूक मेरे जिम्मे आते हैं, जिनको कि मैं अदा नहीं कर पा रहा हूँ, अल्लाह तू मुझे उनसे मुआफी दिलवा भी दे, ठीक है, मुआफ कर भी दे और मुआफ करवा भी दे, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ना मुआफ करवा सकते हैं। और हदीस मुबारक में ऐसा आता है कि کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر لوگوں کے حقوق آتے ہوں گے، لیکن چونکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ ایسی زندگی گزارتے تھے، اللہ کی خشیت والی زندگی گزارتے تھے، تو جن کے حقوق ان کے اوپر آتے تھے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سے ان لوگوں کو دے کر کے نا اس کو اس کی جان چھڑوا دیں گے، ٹھیک ہے نا. اپنی اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتوں کی کوئی کمی ہوگی وہاں پر؟ کوئی کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. جنت کی ایک سے ایک نعمتیں، تو حقوق والوں کو اللہ تعالیٰ دے دلا کے اس کو چھڑوا دیں گے، کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن اس کے لیے یہ کون، یہ ہر بندے کے ساتھ ایسا ہوگا؟ ہم نے تو بھائی سنا ہے ہمیشہ کہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے تو بھائی پھر یہ کیسے ہوگا؟ یہ بھی تو حدیث میں موجود ہے کہ ایسا ہوگا، تو پھر کیسے ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا کہ یہ وہ بندے ہوں گے جو کہ اپنی غلطی کا احساس رکھتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہوں گے، مدد بھی مانگتے ہوں گے اور ساتھ ساتھ کوشش بھی کرتے رہتے ہوں گے، ٹھیک ہے. اگرچہ کوشش میں ناکام بے شک ہوتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خلاصی کروا دیں گے اپنی نعمتوں کے بدلے میں. تو یہ ہے اصل میں یعنی دا کی ٹو سکسیس جو ہے نا وہ ہے خشیت، ڈرتے رہنا ہر وقت. آگے فرمایا کہ حدیث نقل کری کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خمسن. اچھا ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ جو خشیت ہے نا یہ کوئی لفاظی کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں لفاظی خوب اس کے اندر ڈال دیے کہ اللہ معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے، نہیں یہ لفاظی کا نام نہیں ہے، بلکہ خشیت کی بھی شرط ہے یا خشیت کی بھی نشانی ہے کہ بھئی خشیت ہے بھی کہ نہیں ہے، صرف لفاظی ہے یا واقعی خشیت ہے، ٹھیک ہے. خشیت کی نشانی یہ ہے کہ یہ بندہ جب اس بارے میں ڈرتا ہے نا کہ میں دوسروں کا حق ادا نہیں کر رہا، تو وہیں یہ اپنا حق چھوڑنے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتا ہے، یہ اپنا حق چھوڑنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے، دوسروں کے معاملے میں نرم رہتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے سائن آف خشیت، یہ ہے سائن آف خشیت، ٹھیک ہے. دعا کے اندر لفاظی کرنا اور دعا کے اندر آنسو بھی گرا دینا اور آگے سے اگلے بندے کے ساتھ ٹائٹ رکھنا ہر وقت معاملہ، اپنا حق نہیں چھوڑنا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی اس طرح سے رکھنا معاملہ، ٹھیک ہے. تو یہ دھوکا ہے، یہ نفس کا دھوکا ہے، یہ خشیت وشیت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو خشیت کی نشانی بھی یاد رکھیں، یہ نشانی اگر پوری ہے نا ہمارے اندر پھر خشیت ہے، ادروائز کوئی خشیت نہیں ہے. اگر اگلے بندے کے بارے میں نرمی نہیں ہے نا تو پورا پورا وصول کرنا ہے، تو یہ کوئی خشیت نہیں. آگے چلیں کہ حدیث عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خمسن بخمسن یعنی پانچ گناہوں کی سزا پانچ چیزیں ہیں. نمبر ایک کہ جو شخص عہد شکنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن کو مسلط اور غالب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت بہت ہی پریشان ہونے والی بات ہے، کیونکہ ہمارے انڈیویجول معاملات میں تو یہ بہت ہوتا ہے کہ ہم عہد شکنی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا عہد شکنی کر جاتے ہیں، پھر وہی بات ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کے اوپر معافی مانگ لیں یا تو بندے سے معافی مانگ لیں، بندے سے معافی نہیں مانگ سکتے جس کا عہد شکنی کری ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو روئے دھوئے نا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کروا دے جس کے ساتھ میں نے یہ کام کیا ہے، اس سے بھی مجھے معاف کروا دے، ٹھیک ہے. لیکن نڈر ہو جانا اور اس الٹا اس بندے پہ چڑھ جانا جس سے عہد شکنی کری ہے، الٹا اس کے اوپر چڑھ جانا، انفارچونیٹلی ہماری نیشنل کیریکٹر تو ہمارا یہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد ہمارا تو ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، انڈین سے بات نہیں کر رہا، پاکستانیوں سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے تو اجتماعی شکل میں اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اجتماعی شکل میں اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ جی ہم نے یہ ملک جو ہے نا آپ سے مانگا تھا کہ جی ہم اس کے اندر اسلام کا نظام اس کے اندر اپلائی کریں گے، اور اب ہم نہیں چاہتے کہ اس میں اسلام کا نظام ہو، ٹھیک ہے. اس لیے کہ اسلام کا نظام ہوگا تو ہماری پھر وہ ہم سے ہمارے یعنی ہمارے سارے شغل میلے ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. ہماری جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ختم ہو جائے گی، ہماری ٹی وی ختم ہو جائے گی، ہماری موسیقی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. ہماری من مرضی کا جیسے ہم پہنتے اڑنا چاہتے ہیں وہ پہننا اڑنا ختم ہو جائے گا، ہم جس طرح سے تفریحات کرنا چاہتے ہیں وہ تفریحات ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا. اپنے گربان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے نا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک اجتماعی شکل میں پوری قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد شکنی کر رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد شکنی کرتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر باہر سے انسٹرکشنز آتی ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو ایسے نہ کرو، یہ کر لو گے تو ہم یہ کر دیں گے، ایسے کر لو گے تو ہم یہ بند کر دیں گے، رائٹ. یہ انسٹرکشنز کہاں سے آتی ہیں، پھر باہر سے آتی ہیں. اور ہم کس کو الزام ٹھہراتے ہیں، ہم اپنی حکومت کو الزام ٹھہراتے ہیں جو کہ ہم میں سے ہی ہیں، ٹھیک ہے. وہ باہر سے کوئی تھوڑی آئے ہیں، اللہ کا شکر ہے ابھی وہ نوبت نہیں آئی کہ باہر سے آ کر کے ہمارے اوپر ہمارے دارالحکومت میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے. وہ بھی نوبت آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. وہ نوبت آنے میں بھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، बरेसगीर में मुगलों ने 800 साल हुकूमत करी थी ना, या 600 साल हुकूमत करी थी। फिर क्या हुआ, इतनी दूर से हैं, इतने हजारों मील दूर से एक ऐसी कौम आई कि जो कि इस जगह की जुबान भी नहीं जानती थी हैं, और इस जगह के लोगों से उनकी शक्लो सूरत ही बिल्कुल मुख्तलिफ थी, यानी बिल्कुल ही गैर थे। ऐसा भी नहीं कि पड़ोस के मुल्क ने आकर के हम पे कब्जा कर लिया था, हजारों मील दूर से वो लोग आए और पूरे के पूरे मुल्क पर से वो 600 साल के जो हुक्मरान थे ना उनको निकाल बाहर किया है, रंगून में भिजवा दिया और खुद काबिज हो गए। ठीक है, और जो चीज यहां से ले जाना चाहते थे ले गए। तो भाई अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि ये काम भी हमारे साथ हो जाए, लेकिन सो फार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इससे बचा के रखा हुआ है। अभी जो है वो सिर्फ बाहर बैठे हुए हमें हुकूमत, वो हमारी हुकूमत कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारे अपने लोगों के थ्रू हमारी हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। तो ये क्यों है, क्योंकि हमने अल्लाह ताला के साथ एक अहद किया था और उस अहद की अहद शिकनी करी है बहुत बुरी तरीके से, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने दुश्मन को मुसल्लत और गालिब कर दिया हमारे ऊपर। नंबर दो, जो कौम अल्लाह के कानून को छोड़कर दूसरे कानून पर फैसले करते हैं, इनमें फकर व एहतियाज आम हो जाता है। अब बज़ाहिर हमारे अंदर फकर व एहतियाज नजर नहीं आता, ठीक है, लेकिन उसकी तशरीह आगे आ रही है कि फकर व एहतियाज का मतलब क्या होता है, फिर वो उधर ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तीसरी बात के क्योंकि अल्लाह के कानून को छोड़कर दूसरे कानून के मुताबिक तो फैसले कर रहे हैं ना हम लोग, तो फकर व एहतियाज तो आया हुआ है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या है फकर व एहतियाज। हमारी तो बड़ी माशाल्लाह लाख लाख रुपए की सैलरीज होती हैं और ना जाने जो है वो क्या क्या हमें हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, तो बज़ाहिर तो फकर व एहतियाज नहीं है। खैर, तीसरी चीज कि जिस कौम में बेहयाई और जिना आम हो जाए उस पर अल्लाह ताला ताउन और दूसरे वबाई अमराज मुसल्लत कर देता है। तो इस तरफ भी हम हमारी प्रोग्रेस अल्लाह माफ करे बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों में ये चीज पहले से हो चुकी है, जैसे यूरोप और अमेरिका, ठीक है, और इस तरह के जितने ये नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके अंदर ये बे इंतहा हो चुकी है, तो वहां पर एड्स तो न जाने और क्या क्या अमराज जो हैं ताउन की शक्ल के अंदर इनके ऊपर ऐसे आ चुके हैं कि जो कि जिनसे के इनके पिछली नस्लें वाकिफ नहीं थी। ठीक है ना, पहले इन्होंने नाम भी नहीं सुना था इन इन बीमारियों का। ठीक है, तो ये बेहयाई और जिना आम होने की वजह से इनके ऊपर तो आया हुआ है, लेकिन अब हमने भी पीछे इनके ही चलना है ना, हमने अपनी इंस्ट्रक्शंस और हमने अपनी जिंदगी के उसूल इन्हीं से लेने हैं। तो भाई जब जिंदगी के उसूल इनसे लोगे तो फिर इन्हीं की बीमारियां हमें भी लगेंगी। ठीक है ना, तो अब इस तरह की बीमारियां हमारे यहाँ भी बहुत हैं। सुइसाइड एक बीमारी है, ठीक है, एक यानी एक बीमारी का एक्चुअली मैनिफेस्टेशन है सुइसाइड, जो कि हमारे यहाँ पहले नहीं होता था, बहुत कम होता था, इक्का दुक्का कभी कोई वाकया होता था। अब जाके देखें जरा सुइसाइड के स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान के अंदर कितने ज्यादा हैं। ठीक है, हालांकि ये जो चीज थी हम कहते थे जी ये तो यानी वेस्ट यूरोप का मसला है और अमेरिका के अंदर भी जो है वो एक आध जगह होती, सियाटल का मसला है जी, ये तो अमेरिका के अंदर है, सियाटल में सबसे ज्यादा लोग सुइसाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये सुइसाइड के रेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा आए हुए हैं। तो भाई उनके पीछे चलेंगे तो पूरा पैकेज मिलेगा ना, खाली थोड़ा सा पैकेज नहीं मिलेगा, पूरा पैकेज मिलेगा, जो उनके पास है वो सब का सब मिलेगा हमें। ठीक है, सिर्फ जो है वो अच्छी सड़कें नहीं मिलेंगी बल्कि खुशियां भी मिलेंगी साथ साथ, बेहयाई भी साथ साथ मिलेगी, सिर्फ ये मशीनरी और टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी बल्कि सब कुछ मिलेगा उधर से। ठीक है, तो पूरा पैकेज मिलता है जब आप किसी की इत्तबा करते हैं। तो ये तीसरा मामला हो गया। चौथा मामला हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायत जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। चौथी चीज क्या फरमाई कि जो वो लोग नापतोल में कमी करने लगे अल्लाह ताला उनको कहत में मुब्तला कर देता है। अब कहत की भी तफसील आगे आएगी इंशाल्लाह, ये फकर एहतियाज ही की तरह से। पांचवी चीज कि जो लोग जक़ात अदा नहीं करते अल्लाह ताला उनसे बारिश को रोक देता है। तो बारिश भी बड़ी यानी मिन्नत सिमाजत कर करके बड़ी मुश्किल से होती है, फिर अगर होती भी है तो वो एक मुसीबत लेकर के आती है, रहमत की बारिशें जो है वो यानी बहुत कम ही होती है हमारे यहाँ। बहरहाल ज़कात अदा करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत सारे मौजूद हैं और बहुत सारे नहीं भी अदा करते हैं, तो उस हिसाब से फिर आप बारिशों का मामला समझ लें। आगे फरमाया कि और तिब्रानी ने हजरत इब्ने अब्बास से रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कौम में माल गनीमत की चोरी राइज हो जाए अल्लाह ताला उनके दिलों में दुश्मन का रोब और हैबत डाल देते हैं। माल गनीमत की चोरी का मतलब ये कि ये एक एक कॉमन माल होता है जो कि मुसलमानों में शरीयत शरीयत के मुताबिक जो है वो तकसीम किया जाता है, लेकिन जब उसको चोरी करना शुरू हो जाए तो फिर इस तरह का मामला होता है कि दुश्मन का रोब और हैबिट डाल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो है वो अवाम के अंदर कम से कम जो है वो हैबत और रोब वाला मामला वैसे नहीं है। ठीक है, अभी अभी भी हम जो है वो यानी जितना कर सकते हैं आंखें दिखाने वाला काम जो है वो कर जाते हैं, तो शायद हम माल गनीमत वाले, चूंकि माल गनीमत का तो सिस्टम ही नहीं है ना अब हमारे यहाँ, तो शायद ये गुना अब हम कर ही नहीं पाते हैं, कर सकते ही नहीं है, तो इस वजह से उस गुना के अजाब से भी थोड़ा बहुत बच गए हैं। जिस कौम में रिबा यानी सूद खोरी का रिवाज हो जाए उनमें मौत की कसरत हो जाती है, तो हादसाती मौत और बीमारी की वजह से मौत और न जाने और क्या क्या तरीके होते हैं मौत के, तो उनकी कसरत हो जाती है, फिर रिबा आम हो जाए, तो जो कौम नाप तोल में कमी करती है तो अल्लाह ताला उनका रिस्क कता कर देते हैं, और जो लोग हक के खिलाफ फैसले करते हैं उनमें कत्लो खून आम हो जाता है। कत्लो खून आम क्यों हो जाता है? इसलिए कि जब हक के खिलाफ फैसले होते हैं ना, नाइंसाफी होती है, तो फिर लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको अदालतों से कानून नहीं मिल रहा होता, तो फिर खुद जो है वो फैसले करते हैं, और जब खुद फैसले करेंगे तो उनके पास तो इतनी समझ नहीं है ना कि वो सही फैसले कर सकें, और फिर वो जाहिर है अफरात और तफरीत का शिकार हो जाते हैं, फिर वो जो है वो अगले बंदे का खून पीना शुरू हो जाते हैं, लेना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरीके से ना एनार्की बढ़ जाती है, ठीक है, इस तरीके से फिर कत्लो गारत करी आम हो जाती है। तो हक के खिलाफ फैसले करना तो ये करना चाहिए, फिर नहीं करेंगे तो फिर वो लंबा मसला खड़ा हो जाएगा। जो लोग मुआहदात में गद्दारी करते हैं अल्लाह ताला उन पर उनके दुश्मन मुसल्लत कर देता है। तो वो एक अलग हदीस थी, लेकिन उसमें भी तकरीबन यही बातें थी, और ये एक दूसरी हदीस है, तो इसमें भी तकरीबन यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें फरमाई हैं। आगे फक्र फाका और कहत और कतअ रिज़्क़ की मुख्तलिफ सूरतें, ठीक है, जैसे अभी आपसे कहा था कि आगे आ रही है ये तफसीर, तो फरमाया कि हदीस में जिन लोगों का रिस्क कता कर देने का इरशाद है उसकी ये सूरत भी हो सकती है कि उसको रिस्क से बिल्कुल महरूम कर दिया जाए, ठीक है, तो यानी बिल्कुल ही ना मिलना शुरू, ये जो कहत वगैरह भी होता है जिससे कि लोग मर भी जाते हैं, तो रिस्क से बिल्कुल महरूम कर दिया जाता है, बिलाखर के भूख के मारे ही लोग जो है मरना शुरू हो जाते हैं, और ये सूरत भी हो सकती है कि ये सूरत भी कतअ रिस्क ही में दाखिल है कि रिस्क मौजूद होते हुए वो उसको खा ना सके या इस्तेमाल ना कर सके, ठीक है। अच्छा, ये जो इथियोपिया वगैरह के अंदर कहत आए थे ना, कहत वगैरह आए थे सोमालिया में, इथियोपिया में, तो इसका अगर आप डिटेल में जाकर के स्टडी करें ना, तो पता लगेगा कि ऐसा नहीं था कि खाने की चीजें मौजूद नहीं थी, असल में ये जो कहत था इसकी रीजन, जहां तक मेरे इल्म में, मुझे कामिल इल्म नहीं है, मैंने कोई बाकायदा स्टडी नहीं किया, लेकिन जहां तक मैंने सुना था वो ये था कि असल में इसकी जो कॉज बनी थी वो खाना जंगी बनी थी, ठीक है, जो सिविल वॉर इन मुल्कों में हुई थी ना वो कॉज बनी थी, जिसकी वजह से ये दुश्मन कबीले वालों तक जो है ना खाने की चीजें पहुंचने नहीं देते थे, या दुश्मन कबीले वालों को खाने के जखीरों तक पहुंचने नहीं देते थे, तो इस वजह से कहत होता था, ठीक है। अब ये ईदी अमीन और ना जाने कौन कौन वहां पे वॉर लॉर्ड्स थे कि जिनके दरमियान लड़ाइयां होती थी, और इसके नतीजे में फिर ये कहत से लोग मरना शुरू हो गए थे। तो अल्लाह ताला ने रिस्क तो रखा हुआ था, लेकिन अब इंसान अपने फसाद की वजह से, ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत अईदी नास, ठीक है, इंसान जो है वो अपने हाथों से जो है वो फसाद पैदा करता है, इसकी वजह से जो है वो फिर लोग मरना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो गोली गोली से मरें, चाहे जो है वो भूख से मरें, चाहे प्यास से मरें, तो इंसानों के अपनी हरकतों की वजह से ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो फरमाया कि ये सूरत भी कतअ रिस्क में दाखिल है कि रिस्क मौजूद होते हुए वो उसको खा ना सकें या इस्तेमाल ना कर सकें, जैसे बहुत सी बीमारियों में इसका मुशाहिदा होता है, तो बीमारी में भी तो यही होता है ना कि मौजूद तो होता है घर के अंदर लेकिन उस खाने को अपने पेट के अंदर डाल नहीं सकता। अच्छा, इस जमाने में ये बहुत आम है। इसी तरह कतः कहत की ये सूरत भी हो सकती है कि अशियाए जरूरत मफकूद हो जाए, मफकूद मतलब मार्केट से गायब हो जाए, कम हो जाए बहुत ज्यादा, और ये भी हो सकती है कि मौजूद बल्कि कसीर होने के बावजूद उनकी गिरानी इतनी बढ़ जाए कि खरीदारी मुश्किल हो जाए, ठीक है, वो शेल्फ में मौजूद है लेकिन आप खरीद ही नहीं सकते, जैसा कि आजकल इसका मुशाहिदा अक्सर चीजों में हो रहा है, क्योंकि ये जो यानी इन्फ्लेशन और यानी महंगाई वगैरह है, तो ये तो मुस्तकिल बढ़ी ही चली जा रही है ना, और माशाल्लाह आज तो और भी ज्यादा बढ़ गई है, पहले कुछ कम कम थी, अब तो और बढ़ गई, तो बड़ी ही चली आ रही है, कमी की तरफ कोई हमारे मुल्क में तो कम से कम नहीं है, और इवन आप दूसरी जगहों पर भी देखें तो जिन जगहों में आज से 10-15 साल पहले अच्छी खासी सस्ती चीजें मिल जाया करती थी, आज वहां पे वो सस्ते वो मामला खत्म हो गया है, अब वैसी सेविंग्स लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और चीजों की प्राइसेस जो है वो अपनी बढ़ती चली जा रही है, कहीं पर कोई टैक्स लग गया, कहीं पर कोई टैक्स लग गया, तो वन वे और दी अदर महंगाई बढ़ ही रही है हर जगह। حدیث میں اور حدیث میں فقر مسلط کرنے کا ارشاد ہے. اس کے معنی صرف یہی نہیں کہ روپیہ پیسہ اور ضرورت کی اشیاء اس کے پاس نہ رہیں، بلکہ فقر کے اصلی معنی محتاجی اور حاجت مندی کے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ڈپینڈنسی بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ دوسرے کے اوپر. محتاجی اور حاجت مندی کا مطلب کیا ہے؟ ڈپینڈنسی بڑھ جاتی ہے دوسرے بندے کے اوپر. آپ یعنی انڈیپینڈنٹ نہیں رہتے پھر اس کے بعد. ٹھیک ہے، بے شک آپ کے والٹ کے اندر بہت سارے پیسے ہوں، آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر بہت سارے پیسے ہوں. تو اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہر شخص اپنے کاروبار اور ضروریات زندگی میں دوسروں کا جتنا محتاج ہو وہ اتنا ہی فقیر ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنی ریسورسز سے وہ چیزوں کو فلفل نہیں کر سکتا، اپنی ضروریات کو، وہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اب اس کو ہم، یہ جو کافروں کا اکانومی کا سسٹم ہے، تو اس کو جو ہے وہ مارکیٹ اکانومی کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر جو وہ ڈیپینڈنسی ہوتی ہے، تو اس کو بڑے اچھے انداز میں یہ پریزنٹ کرتے ہیں. ہر بندہ دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیپینڈنٹ ہے. تو بھائی ایک حد تک تو یہ بات ہے جو کہ اسلامی اکانومی، اسلامک اکانومی کے اندر بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ہی محتاج بنایا ہے دوسرے بندے کے لیے. ٹھیک ہے، ہر بندہ سروسز کے لیے اگلے بندے کا محتاج ہے. آپ گھر خود سے نہیں بنا سکتے، آپ کو گھر بنانے والے لوگ چاہیے. آپ جو ہے وہ گائیں اپنے گھر کے اندر رکھ کر کے جو ہے وہ گائے کا دودھ نہیں دھو سکتے. یہ گائے کا دودھ دھونا بھی جو ہے وہ ایک ایک ہنر ہوتا ہے. آپ کو اس کے ہنر والے لوگوں کے اوپر ڈپینڈنسی ہے. تو ایک ڈپینڈنسی تو وہ ہے نا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نظام چلایا ہے ڈپینڈنسی کا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو بات کر رہے ہیں نا، یہ اس ڈپینڈنسی سے آگے بڑھ کر کے ایک اور ہی لیول کی ڈپینڈنسی کی بات کریں، جس کی مثال آگے آتی ہے کہ اس زمانے کے حالات پر غور کیا جائے تو انسان اپنے رہن سہن، نقل و حرکت اور اپنے ارادوں کے پورا کرنے میں ایسے ایسے قوانین میں جکڑا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کے لقمے اور کلمے تک پر پابندیاں ہیں. ٹھیک ہے، اپنا مال موجود ہوتے ہوئے خریداری میں آزاد نہیں کہ جہاں سے چاہے کچھ خریدے، سفر میں آزاد نہیں کہ جب کہیں جانا چاہے چلا جائے. یہ جو پاسپورٹس کا سسٹم ہے، ویزاز کا جو سسٹم ہے، یہ پہلے کوئی تھوڑی تھا. ٹھیک ہے، پہلے مسلمان ملک بھی ہوتے تھے، غیر مسلم ملک بھی ہوتے تھے، رائٹ؟ انڈیا بھی ہوتا تھا، اور ایجپٹ بھی ہوتا تھا، اور عراق بھی ہوتا تھا، اور فلسطین بھی ہوتا تھا، اور سب کچھ ہوتا تھا پہلے. لیکن ویزا سسٹم اور پاسپورٹ سسٹم تو پہلے نہیں ہوتا تھا نا. ٹھیک ہے، لوگ سفر کرتے تھے، سفر کر کے اگلے ملک میں چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن پھر ایسے حالات دنیا کے پیدا ہو گئے، یے جو کلونیل سسٹم آیا، پھر کلونیل سسٹم نے جو ہے وہ باقاعدہ باؤنڈریز جو ہے وہ سیٹ کر دی. اب باؤنڈریز کے تھرو جانے کے لیے، اب جب تک آپ اس ملک کا پاسپورٹ نہیں بنائے اور اگلے ملک کا آپ ویزا نہ لیں، اس وقت تک آپ اگلے ملک میں نہیں جا سکتے. لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے جو ہے لوگ کیروان میں سفر کرتے تھے، اگلے ملک میں چلے آتے تھے، پھر اس کے اگلے ملک میں چلے آتے تھے، پھر اس کے اگلے ملک میں چلے آتے تھے. اب آپ سفر کے اندر آزاد نہیں ہے. اب جو بھی اس کی ریزن بنی، بھائی سیکیورٹی ریزن بنی، نہ جانے وہ دہشت گردی اس کی ریزن بنی، تو فلانی ریزن بنی، جو بھی ریزن بنی، وہ تو اپنے انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ایسی ریزن بنی ہے نا. لیکن ہماری یعنی آزادی جو ہے وہ کس حد تک کم ختم ہو گئی ہے. تقریباً پاکستانی تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویسے ہی اسپیشل لوگ ہیں، ان کو تو ویسے ہی ویزا ویزا نہیں ملتا اکثر جگہوں کا. تو سفر میں آزاد نہیں ہے کہ جب کہیں جانا چاہیں چلا جائے. تو اچھا، اس کے اوپر ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ یہ جو لینڈ آف دا فری، دا لینڈ آف دا فری کون سا ملک ہے جی؟ لینڈ آف دا فری امریکہ ہے نا. تو لینڈ آف دا فری کے اندر بڑی مزے مزے کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک میں نے کتاب خریدی کہیں سے، مجھے ایسی انہوں نے بک فیئر کہیں لگی ہوئی تھی، 50 سینٹ کی میرے خیال میں مجھے مل گئی تھی. تو ٹائٹل اس کا تھا کہ کیا اس کا ٹائٹل ابھی تک ہے وہ کتاب میرے پاس، یعنی وہ کتاب اس بارے میں ہے کہ امریکہ جو کہ بہت ہی زیادہ انڈیپینڈنٹ اور لینڈ آف دا فری کہلاتا ہے، تو اس کے اندر جو قوانین ہیں نا وہ کتنے زیادہ نان سینس قسم کے قوانین ہیں. ٹھیک ہے، اور کتنے زیادہ قوانین ہیں، یعنی حد، ساری حدود کراس کی ہوئی ہیں ان قوانین نے. انسانوں کو جو ہے وہ بیسیکلی باؤنڈ کرنے میں قوانین، اتنے نان سینس قوانین. وہی پوری کی پوری کتاب تھی، وہ ایک لائر کی لکھی ہوئی کتاب تھی، جو کہ بہت زیادہ اس طرح کے نیو یارک جیسی جگہ کے اوپر، جو کہ سب سے زیادہ وہاں پر کورس بزی میٹروپولیٹن ہے، تو وہاں پر وہ کورٹ کیسز وغیرہ لڑتا رہتا ہے. اس نے ساری زندگی یہ ساری چیزیں خود ڈیل کری ہیں. تو وہ سارے کیسز جو ہے نا اس نے کتاب میں لکھ دیے ہیں کہ کتنا انسان جو ہے وہ جکڑے ہوئے ہیں قوانین کے اندر. تو اگر اس کتاب کا ہی مطالعہ کر لیں تو آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ جی یہ جو ہم ہر وقت پاکستان کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، ہم پاکستان کو گالیاں اس وجہ سے دے رہے ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے. पाकिस्तान को नहीं गालियां दे रहे, अपने आप को गाली दे रहे हैं कि भाई हम दुरुस्त हो जाएं तो पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी कोई जगह नहीं है। लेकिन ये तो हम कहते हैं ना कि अमरीका तो जन्नत नजीर है और अमरीका में तो सब अच्छा होता है और यूरोप में तो और भी ज्यादा अच्छा होता है और सिंगापुर में और भी ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। आप जरा अंदर जाकर के देखें, थोड़ी तफसील को स्टडी करें तो सारी हकीकत, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाता है कि वहां पर तो हमारे से ज्यादा बुरे हालात हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो ऊपर ऊपर से उन्होंने कुछ लेपा पोती करके ना वो चीजों को अच्छा खुश शक्ल बना दी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की तरह से, राइट। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऊपर से कितनी अच्छी लगती है लेकिन अंदर से कितना बुरा आर्किटेक्चर है उसका, ये तो कंप्यूटर साइंस वाले सारे ही जानते हैं ना इस बात को। बिल्कुल यही मामला उनका भी है, ऊपर ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं, अंदर अंदर से जाकर के देखो ये आजिज जो है वो काफी अरसा जो है वो उनके प्रिजन्स में जाता रहा, ठीक है, उनके जेल खानों के अंदर एज अ मुस्लिम चैपलन के तौर पर, ठीक है, वहां पे जाकर के थोड़ा सा दीन के बारे में बात करते थे, लोग आते थे सुनते थे, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हो जाते थे। तो प्रिजन्स के अंदर जाकर के देखो तो इतना, यानी इतना बुरा वहां पे सिस्टम है और लोगों की जिंदगियां जो बताते भी थे आकर के अपने बारे में कि जी कैसी उनकी जिंदगियां गुजर रही हैं, कैसे बाहर होते तो क्या होते थे, अंदर आए हैं तो क्या होता है, ठीक है, यानी इट्स हेल लिटरली। दुनिया में अगर कोई 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 जहन्नुम हो सकता है ना, तो दुनिया का जहन्नुम जो है वो उनके उनकी जिंदगी है, ठीक है, उनके प्रेजेंट के अंदर की जिंदगी हो, प्रेजेंट के बाहर की जिंदगी हो, जहन्नुम से ज्यादा बुरी जिंदगी है उनकी, ठीक है। आपको यानी जो जिसने देखा होगा करीब से जाकर के तो वो उसको अंदाजा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कजालिकल अजाब वल अजाबुल आखिरती अकबर, ठीक है, ये अजाब है दुनिया का जो कि इन लोगों को मिलता है, कुफार को अल्लाह ताला की नाफरमानी की जिंदगी गुजार करके मिलता है, और आखिरत का अजाब तो इससे भी ज्यादा बड़ा अजाब है। तो ये पाबंदियों में इंसान जकड़ा गया है कि हर काम के लिए दफ्तर गर्दी और अफसरों से लेकर चपरासियों तक की खुशामद किए बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है, ये सब मोहताजी ही तो है जिसका दूसरा नाम फकर है। इस तफसील से वो शुबहात दूर हो गए जो हदीस के इरशाद के मुताल्लिक जाहिरी हालात के एतबार से हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो था ना कि जी अल्लाह के कानून को छोड़कर दूसरे कानून पर फैसला करते हैं तो हमें तो कोई फकर और एहतियाज नजर नहीं आता, हम तो बड़े अच्छे से जिंदगी गुजार रहे होते हैं इस एतबार से, लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी बहुत ज्यादा फकर और एहतियाज का शिकार हुए हुए हैं। और उसकी वजह क्या है, अल्लाह के कानून को छोड़ करके हम अपने बनाए हुए कानून या काफरों के बनाए हुए कानून उसके मुताबिक फैसले कर रहे होते हैं। इसके बाद सिज्जीन और इलियीन का जो तस्करा इस सूरत के अंदर आया था, इन्नल अबरार लफी इलियीन और वगैरह, इन्नल अबरार लफी नईम अला राय के यंजुरून, क्या था वो, हाँ, कल्ला इन्ना किताब अबरार लफी इलियीन, उसी तरह से जीन का भी तस्करा था, इन्नल फुजार लफी सिज्जीन। तो इसके बारे में फरमाते हैं कि सिज्जीन बेकसरे सीन, यानी सीन के कसरे, सीन के नीचे कसरा है, जेर जिसको हम कहते हैं उर्दू में, तो सिज्जीन है ये लफ्ज। तो फरमाते हैं कि बिकसरे सीन व तशदीद जीन, यानी जीन के ऊपर तशदीद है, बर वजन सिक्कीन, सिक्कीन कहते हैं छुरी को, यानी सिक्कीन के ही वजन पर सिज्जीन पढ़ा जाएगा। तो ये लफ्ज सिजन से मुश्तक है, सिजनुन, जिसके मानी तंग जगह में कैद करने के हैं। जैसे कि आपको याद होगा हमने ज्यादा तालबीन की हदीस पढ़ी थी कि अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है, तो ये वही सिजन है। तो ये सिजीन जो है ना वो सिजन से ही निकला, कामूस में है, कामूस एक बहुत मशहूर और बड़ी डिक्शनरी का नाम है अरबी की, तो कामूस में है कि सिजीन के मानी दायमी कैद के हैं। और अहादीस व आसार से ये मालूम होता है कि सिजीन एक मुकाम खास का नाम है, यानी लिटरल ट्रांसलेशन होगी दायमी कैद, लेकिन जो इस्तिलाही ट्रांसलेशन है लफ्ज सिजीन की वो कुरान और हदीस से पता लगती है, यानी हदीस और आसार से पता लगती है कि वो एक खास मुकाम का नाम है और कुफार फुज्जार की अरवाह का मुकाम यही है और इसी मुकाम में उनके आमाल नामे रहते हैं। तो इनकी अरवाह भी यहाँ पे रहती हैं और इनके नामे आमाल भी सिजीन में ही रहते हैं, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनके आमाल नामे उस जगह में महफूज कर दिए जाते हैं। और ये भी मुमकिन है कि इस जगह कोई ऐसी जामे किताब हो, ऐसी किताब जामे हो, कॉम्प्रिहेंसिव किताब हो, जिसमें तमाम दुनिया के कुफार व फुज्जार के आमाल लिख दिए जाते हों, ठीक है, यानी जिनमें लिखे हुए हों, सेव हुए हुए हों, रिकॉर्ड हुए हों, कोई ऐसी किताब हो सकता है, हो, ये इहतमाली तौर पर बात कर रहे हैं कि जो कि सिजीन के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो अब ये मुकाम है किस जगह पर, तो تو اس کے متعلق حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سجین ساتویں زمین کے نچلے طبقے میں ہے. ٹھیک ہے, جیسے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ زمین کے بھی سات طبقے ہیں اور آسمان کے بھی سات طبقے ہیں, ساتوں آسمان کا تو تذکرہ آپ نے سنا ہوگا. تو علیین کیا ہے؟ علیین کہاں پر ہے؟ جہاں پر کہ ابرار کی روحیں ہوتی ہیں اور ابرار کے نام اعمال ہوتے ہیں, وہ ساتویں آسمان میں زیر عرش ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ عرش اللہ تعالیٰ کا ساتویں آسمان کے اوپر ہے, تو علیین عرش کے نیچے ساتویں آسمان کے اوپر ایک مقام ہے علیین. بعض روایات حدیث میں یہ بھی ہے کہ سجین کفار و فجار کی ارواح کا مستقر ہے, ارواح کا ٹھہرنے کی جگہ اسٹیشن, اور علیین مومنین متقین کی ارواح کی جگہ ہے. ٹھیک ہے, جنت اور دوزخ کا مقام یہ میرے خیال میں ہم اگلی کلاس میں پڑھتے ہیں, اس لیے کہ ابھی کافی تفسیر ہے اس سورت کی تفسیر میں, اور کافی انٹرسٹنگ اور بڑی اہم باتیں آگے آتی ہیں, تو انشاءاللہ وہ ہم اگلی کلاس میں کرتے ہیں. کسی کو کوئی سوال ہے؟